समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, समाचार पत्रिका परिक्रमा में आपका स्वागत है। श्रोताओं, हर रोज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं देश विदेश के समाचार, साथ ही देश भर में मौजूद हमारे संवाददाता अपनी विशेष रिपोर्ट के माध्यम से आपको अलग अलग राज्यों की नवीनतम गतिविधियों की जानकारी देते हैं। आर्थिक जगत की खबरों पर भी हमारी नजर रहती है, साथ ही हम आप तक पहुंचाते हैं और दूसरी भी खबरें। तो आइए शुरू करते हैं परिक्रमा कार्यक्रम। आज के अंक में मैं हूं आपके साथ धर्मेंद्र मणि राजेश और मेरे साथ है मेरी सहयोगी अनुजा कुमार। अनुजा, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार एंड हेलो धर्मेंद्र। धर्मेंद्र, वी आर हियर विथ येट अनदर फ्रेश न्यू एपिसोड ऑफ आवर रेगुलर आफ्टरनून मैगजीन परिक्रमा। एंड ऑफ कोर्स टेम्परेचर हैज स्टार्टेड मूविंग अप इन दिल्ली। व्हाइल द एयर क्वालिटी इज स्टिल मॉडरेट, न्यू दिल्ली सॉ अ वार्म डे विथ ड्राई विंड्स टुडे। द मैक्सिमम टेम्परेचर इज एक्सपेक्टेड टू राइज फर्दर as the warming trend of summer is advancing. The IMD has also said that they are expecting the maximum temperature to rise gradually, reaching to 33 degrees in a day or two. So summer is a time of year that's synonymous with relaxation. Winter days mein garmi to hoti nahi hai, but itni thand hoti ki we usually don't think of going out of our homes. Yes, but this is a time with relaxation, the warm air and the glowing sun of summer. It all helps people to relax and take some time away from work to smell the roses, go out in the gardens and enjoy. So get ready for the days to wander around in the city before it gets too hot.
बिल्कुल, और ये ऐसा मौसम है कि आप कहीं भी निकल जाइए, ना ज्यादा गर्मी का एहसास होता है, ना ज्यादा ठंड का एहसास होता है, और आप तो मौसम का बहुत अच्छे तरीके से लुत्फ उठा सकते
हैं। Absolutely. So let's get the ball rolling now and get to you the news making headlines at this hour. Starting with the headlines, a Prime Minister and senior BJP leader Narendra Modi holds a roadshow at Palakkad town in Kerala as part of the NDA election campaign, also addresses a public meeting at Salem in Tamil Nadu.
लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र को स्वीकृति देने के लिए पार्टी कार्य समिति की बैठक नई दिल्ली में जारी।
In Maharashtra, four Naxals killed in an encounter with security forces in Gadchiroli district.
मौसम विभाग ने ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और झारखंड में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है।
And 2024 edition of Swiss Open badminton tournament to begin shortly in Basel. And Dharmendra, it's now time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at national or global level. And today we will talk about a crime, that is human trafficking. Human trafficking is the recruitment, transportation, transfer, harboring or receipt of people through force, fraud or deception with the aim of exploiting them for profit. Of course, it is a crime involving the trafficking of human beings by various means for the purpose of exploiting them to extract monetary profit. Human trafficking is an international problem that is fueled by economic and social factors. Human trafficking in India is a huge problem, as well as that primarily victimizes the women and children in particular. And the traffickers often use violence or fraudulent employment agencies and fake promises of education and job opportunities as well to trick and coerce their victims.
जी अनुजा, और इसको दूसरे शब्दों में कहें तो मानव तस्करी जबरन श्रम, यौन दासता या व्यवसायिक यौन शोषण के उद्देश्य से मनुष्यों का व्यापार है। मानव तस्करी किसी देश के भीतर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो सकती है। यह लोगों की तस्करी से अलग है, जिसकी विशेषता तस्करी किए जाने वाले व्यक्ति की सहमति है। मानव तस्करी के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन के रूप में निंदा की जाती है, लेकिन कानूनी सुरक्षा विश्व स्तर पर भिन्न होती है। दुनिया भर में इस प्रथा के लाखों पीड़ित हैं। बच्चों की तस्करी में शोषण के उद्देश्य से बच्चों की भर्ती, परिवहन, स्थानांतरण, आश्रय या प्राप्ति शामिल है। बच्चों का व्यवसायिक यौन शोषण कई रूप ले सकता है, जिसमें बच्चे को वेश्यावृत्ति में धकेलना या अन्य प्रकार की यौन गतिविधि या बाल अश्लीलता शामिल है। बाल शोषण में जबरन श्रम या सेवाएं, गुलामी या गुलामी, दासता, अंगों को निकालना, अवैध अंतर्राष्ट्रीय रूप से गोद लेना, जल्दी शादी के लिए तस्करी, बाल सैनिकों के रूप में भर्ती भीख मांगने या एथलीटों के रूप में उपयोग के लिए शामिल हो सकता है.
Right, men, women and children, irrespective of their age and background, can become victims of traffic occurring in any part of the world. The most common means used by traffickers to trick and coerce the victims are fraud by employment agencies, fake job opportunities, promises for a better life, and education promises as well. Human trafficking constitutes modern slavery, as we can say, and is a multi-billion dollar organized international crime. The victims of trafficking are considered as just commodities that can be sold for financial gains. The victims are mostly women and children who are targeted for their vulnerability, and after trafficking, they are stripped of their freedom and autonomy and are forced to work in unhealthy and precarious conditions. Trafficking victims face mental and physical abuse as well. In fact, if we talk about child trafficking, in simple terms, it is meant taking children out of their native environment and preying on their vulnerability for the purpose of exploitation. Interestingly, trafficking in children on national and international levels is found closely linked with the demand for cheap and docile labor in sectors where the treatment of children and working conditions grossly violates the child's right. And when youth feel like they are not loved, supported in their identity and voice, or like they don't belong to, they become even more vulnerable to unsafe situations. And the traffickers, they take advantage of these situations and they try to traffic them to some other region by giving them money or anything to their parents. So this is a very tragic thing. And of course, if we talk about the other environments are chiefly characterized by unacceptable and dangerous working environments for children, which are detrimental to their health and their overall development as well. It can include, like I'm talking about child trafficking, it can include bonded labor, child domestic labor, prostitution, sexual exploitation for commercial purposes, and slavery-like practices in the informal industrial sector as well.
बिल्कुल. और इसका तरीका अगर कहें जो मानव तस्करी का है, जबरन विवाह भी उसमें शामिल है. जबरन विवाह उसको कहते हैं जिसमें एक या दोनों प्रतिभागियों की स्वतंत्र रूप से सहमति के बिना शादी कर दी जाती है. जबरन विवाह को कुछ स्थितियों और कुछ देशों में मानव तस्करी के एक रूप के रूप में वर्णित किया गया है, जैसे कि चीन और उसके दक्षिण पूर्व एशियाई पड़ोसी, जहां से कई महिलाएं आती हैं, कभी कभी काम का वादा करके उनकी जबरन शादी करा दी जाती है. यौन शोषण में एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के शरीर का यौन उपयोग करके लाभ प्राप्त करता है. सामान्य तौर पर यौन शोषण का अपराधी अपने पीड़ित की कमजोर या आश्रित स्थिति का फायदा उठाता है, जिसमें नशीली दवाओं या शराब की लत भी शामिल है. अपराधी पुरुष या महिला, व्यस्त या नाबालिग हो सकता है और अपने निजी लाभ के लिए या किसी आपराधिक उद्यम के लाभ के लिए काम करता है.
एंड अपार्ट फ्रॉम चाइल्ड ट्रैफिकिंग, विमेन एंड गर्ल्स आर ऑल्सो यूजली ट्रैफिक फॉर द पर्पस ऑफ सेक्सुअल एंड इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन, पर्टिकुलरली प्रोस्टिट्यूशन एंड पोर्नोग्राफी, फोर्स्ड लेबर इंक्लूडिंग फॉर वर्क इन कमर्शियल एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिक वर्क एंड अरेंज्ड मैरिजेस. यू जस्ट रेफर्ड अबाउट इट राइट नाउ. And in a recent development, the National Commission for Women, that is NCW, in our country, and the Railway Protection Force had signed an MOU in New Delhi to prevent and combat human trafficking. Speaking on the occasion, the chairperson of NCW, Rekha Sharma, said that the Railway Protection Force personnel deployed at railway stations are playing a crucial role in the crime against women and children. She said that 70% cases of human trafficking are related to women and girl child.
We have been working extensively to control women trafficking especially. We all know that in human trafficking, 70% who are trafficked are women or girl child. For that, I think NCW's responsibility is very big in controlling the women trafficking. We have been doing these workshops with CISF from last 1 year now, all over India. And later when Honorable Manoj Yadav ji came to my commission and we thought that we will be working together, I am thankful to see that you people are doing amazing work already. I know for me also that Railway Police is doing such big job to control the crime against women and child. this MOU will play a big role in controlling human trafficking. I am very much concerned because all over the world, people are not aware how big is this problem. After drug trafficking, this is the second big challenge for all of us.
And the Director General of Railway Protection Force, Manoj Yadav, has also said that the overall objective of this MOU is to provide safe and secure travel experience to women. He said that RPF will ensure that the railway network is not allowed to be used for any atrocities against women, including trafficking.
Now we are really very confident that after entering this MOU, the active personnel on the ground will be sufficiently trained in the legal provisions surrounding women trafficking, so that they know how the recovered victim is to be assisted, how she is to be given psychological counseling, to which agency she is to be taken. And so I am very confident because RPS now for the last many years has been moving towards becoming a more centric approach. This traditional focus was only on safeguarding labor property. And that was all it used to do till 2003, when the Parliament of India modified our charter and amended the Railway Act to give us additional charter of passenger security. So under the assisted disease, now we are using a more and more humane force, more sensitive, to ensure that the railway network is not allowed to be issued. So towards that greater strategic effort, I am confident that today's signing of MOU will prove to be a very significant milestone and will significantly enhance our ability to control trafficking of women through the railway network. I am very, very grateful to the NCW for finding time for this, and I assure you that our guests will not be found wanting in the responsibilities that have been entrusted to it.
वैसे भारतीय रेल देश के लिए प्राथमिक यातायात का साधन है और इसलिए मानव तस्करों के लिए परिवहन का एक प्रमुख जरिया भी है। ये रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में तैनात आरपीएफ कर्मी पीड़ितों के गंतव्य तक पहुंचने और तस्करी को रोकने के लिए रणनीतिक रूप से तैनात किए जाते हैं। अपनी रणनीतिक स्थिति और अखिल भारतीय पहुंच के साथ आरपीएफ मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के देश के प्रयासों में मदद कर सकता है। और अनुजा, अब समय हो गया है अपने संवाददाताओं के माध्यम से श्रोताओं को देश के अलग अलग भागों में होने वाली खबरों से अवगत कराने का। तो सबसे पहले कहाँ चले, चलते हैं देहरादून। रंगों के त्योहार होली का जो आयोजन है वो इस बार 25 मार्च को पूरे देश में होगा। उत्तराखंड में होली के त्योहार से पहले ही होली खेलने की परंपरा रही है। उत्तराखंड के कुमायूं परिक्षेत्र में खेले जाने वाली होली अपने आप ही खास है। कुमायूं क्षेत्र की अनोखी होली की अधिक जानकारी के लिए चलते हैं उत्तराखंड से हमारे राज्य संवाददाता के पास। संजीव सुंदरियाल की ये रिपोर्ट सुनते हैं।
बसंत के आगमन के साथ ही देवभूमि उत्तराखंड में होली का रंग चढ़ने लगा है। मुख्य त्यौहार से करीब 15 दिन पहले से प्रदेश में होली शुरू हो जाती है। मुख्य रूप से राज्य के कुमाऊं अंचल में खेली जाने वाली होली अपने आप में खास है। होली के गीत इन दिनों पूरे कुमाऊं क्षेत्र में गाए जा रहे हैं, जिनमें बच्चे, बड़े व महिलाएं सभी उत्साह के साथ हिस्सा लेते हैं। कुमाऊं क्षेत्र में मुख्य रूप से तीन प्रकार की होली का गायन गाया जाता है, लेकिन इसमें सबसे खास है खड़ी होली, जिसका अपना अलग अंदाज होने के साथ ही एक इतिहास भी है। कुमाऊं की होली का करीब 400 साल से ज्यादा पुराना समृद्ध इतिहास रहा है। पहाड़ होली को ढोल और गीत तथा उनके रागों के साथ गाया जाता है। पिछले कुछ सालों में रीति रिवाज और परंपराओं में बदलाव तो आया है, लेकिन पहाड़ों में आज भी खड़ी होली की परंपरा कायम है। माना जाता है कि चंपावत में चंद वंश के शासनकाल से खड़ी होली गायन की परंपरा शुरू हुई थी, जो काली कुमाऊं, गुमदेश व सुई से होकर धीरे धीरे पूरे कुमाऊं में फैल गई। चंद शासनकाल से चली आ रही यह परंपरा आज भी अपने महत्व को कुमाऊं की वादियों में समेटे हुए हैं। उन्हीं बैठकी होली में पारंपरिक रूप से कुमाऊं के बड़े नगरों में मुख्यतः अल्मोड़ा और नैनीताल में ही मनाई जाती रही है। बैठकी होली बसंत पंचमी के दिन से शुरू हो जाती है और इसमें होली पर आधारित गीत घर की बैठक में राग रागनियों के साथ हारमोनियम और तबले पर गाए जाते हैं। कुमाऊं क्षेत्र में महिला होली में प्रत्येक शाम बैठकी होली जैसी बैठकें लगती हैं, लेकिन इनमें केवल महिलाएं ही भाग लेती हैं। इसके गीत भी प्रमुखता महिलाओं पर ही आधारित होते हैं। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी देहरादून से संजीव सुंदरियाल।
And now we take you all to a small little town of Sikkim called Soreng, which is known for its largest production of vegetables, oranges and flowers. But right now we are talking about an intensive workshop for campus ambassadors pertaining to the upcoming general elections this year, which was successfully conducted at the conference hall of District Administrative Center in Soreng today. an intensive workshop for campus ambassadors pertaining to the upcoming general elections 2024 was successfully conducted at the conference hall of District Administrative Center, Soreng, on 18th March. Ms. Yeshe Diyonga, DC cum DEO, held an interactive session in order to get feedback from participants. The participants were asked to increase awareness among students in their respective institutions regarding registration and other processes. The DC cum DEO further directed the present teachers to include today's output in school assembly and other activities also. The DEO further motivated the participants, saying that you all are the champions of democracy, and asked them to publicize this year's election tagline, Chunav ka parv desh ka garv. Mr. Sunny Karel, District SVEEP Nodal Officer, deliberated on campus ambassadors and its duties. He highlighted various functions of Elections Commission of India relating to conduct of elections. In addition, he also apprised on different election forms and the present were asked to participate in the process. Further, he informed about the voter helpline application for registration enrollment in electoral rolls. This is Sasha Mubitia for Akashwani News, Kantok. And now from a small, quaint little town of Sikkim to another small town of Nagaland. In Nagaland, the third edition of Northeast Games 2024 kick-started with a glittering opening ceremony at the Regional Center for Sporting Excellence in the town of Sovima last evening. Nagaland Chief Minister Napier Rio officially declared open the third Northeast Games. More from our correspondent.
More than 3,000 athletes from 8 Northeastern states are competing in 15 disciplines on the ongoing Northeast Games 2024. The events are being held in 12 venues across 3 districts, Chumukidima, Dimapur and Kohima. Highlights of today's event include archery, athletics, badminton, basketball, boxing, football, lawn tennis, table tennis, taekwondo, volleyball and wushu. Host Nagaland started their campaign on high note with a victory over Tripura 1-0 in the opening football match being played at the Nagaland Armed Police Training Center in Chumukidima. Meanwhile, in Sapata Crow men's event, Manipur registered their win over Mizoram. For Akashwani Afanyo from Kohima.
And now coming back to Delhi, the Indira Gandhi National Center for the Arts is celebrating its 37th Foundation Day today. The Multidisciplinary Art and Culture Organization is hosting a three-day Foundation Day celebration at the IGNCA premises in New Delhi. Our correspondent reports that the celebrations will feature a wide array of programs delving deep into the rich cultural heritage of the nation.
As part of its Foundation Day celebrations, the IGNCA is organizing events featuring classical singing, instrumental music, dance performances, engaging workshops, and an exhibition of baskets, amongst others. A vibrant celebration of the festival of Holi, Phoolon Ki Holi, is also being celebrated. Amongst the headline performances, the Foundation Day celebration will feature violin performances by the Akarai sisters S. Subbalakshmi and S. Sonalatha, along with Sarod performance by renowned artist Ayan Ali Bagashon on the first day. The second day will host acclaimed santoor player Pandit Rahul Sharma, while singer Vidushi Aarti Ankalikar Tikekar will be lending her classical vocal. Isuri Fag, the folk poetry of Bundelkhand, will be presented on the final day. The Foundation Day celebration will also host a Northeastern Bamboo Basketry exhibition, Basketry. Besides, the IGNCA headquarters, various programs related to its Foundation Day will also be organized at its 9 regional centers. For Parikrama, Adarsh, Akashwani News, New Delhi.
And now time to take you on a tour around India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
Azad Hind Forge hoisted the national flag on Indian mainland in Manipur. Colonel Shaukat Malik hoisted the tricolor in Moirang with the help of Manipuris, including Mairambam Koirang Singh and others who were members of the INA.
The flag, adopted by Subhash Chandra Bose in 1943, was a variant of the Purna Swaraj flag that included the words Azad on the satin band on the top, Hind on the bottom green band, and in the center white band, a springing tiger in lieu of Gandhiji's charkha, symbolizing INA strength and their indomitable will
with Japan's Indian prisoners of war in the Far East with the support of the Indian Independence League, headed by expatriate nationalist leader Raj Bihari Bose. The Liberation Army was revived with the arrival of Subhash Chandra Bose in 1943. In July, at a meeting in Singapore, Raj Bihari Bose handed over the control of the organization to Subhash Chandra.
IMA consisted of about 85,000 troops, including a separate women's unit, the Rani of Jhansi Regiment, headed by Captain Lakshmi Swaminathan. IMA fought along with the Imperial Japanese Army against the British and Commonwealth forces in the campaigns in Burma, Imphal and Kohima. We also remember Martyr Muhammad Khan, a resident of Delhi, who participated in the First War of Indian Independence in 1857. Khan took active part in fighting against the advancing British army in Delhi and was captured by British troops after reoccupation of Delhi. He was accused of rebellion against British rule and executed by hanging on the 19th of March 1858. We salute the great former soil.
That brings us to the end of this episode of Azadi Ka Safar. And coming to the business news of the day, benchmark indices plunged over 1%, dragged by index heavy rate stocks. Negative sentiments in Asian markets after the Bank of Japan's decision to hike interest rates after 17 years also dampened the investor sentiments in domestic markets. Investors also maintained caution in anticipation of tomorrow's outcome from the U.S. Fed meeting. The 30-share Sensex plunged 736 points or 1.01% to close at 72,012, and NSE Nifty declined 238 points or 1.08% to settle at 21,817. In the forex market, the Indian rupee today ended at 83.04 rupees against the US dollar. In the global oil market intraday trade, Brent crude was trading at $86.64 per barrel when reports last came in.
और अब चलते हैं खेल के मैदान पर और जानते हैं आज की खेल गतिविधियां. स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 आज स्विट्जरलैंड के बेसल में शुरू हो गया है. पुरुष सिंगल्स में सातवीं वरीयता प्राप्त भारत के लक्ष्य मलेशिया के लियोंग जुन हाओ के विरुद्ध अपने अभियान की शुरुआत करेंगे, जबकि किदांबी श्रीकांत का सामना ताइवान के वांगजू वेई से होगा. महिला सिंगल्स में चौथी वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु का सामना जर्मनी की यवोन ली से होगा. महिलाओं के डबल्स में छठी वरीयता प्राप्त अश्विनी पोनप्पा और तनिषा कैस्ट्रो की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया की नेलिसा ट्रायस और राशियल एलिस्टिया रोज की जोड़ी से होगा, जबकि ट्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी अमेरिका की एमी जू और केवी जू की जोड़ी से भिड़ेंगी. टूर्नामेंट का समापन रविवार को होगा.
एंड क्रिकेटर पुलकित नारंग, एथलीट मोहम्मद नूर हसन एंड हिमांशु वर अमंग द 19 प्रोमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सन्स हू वर फेलिसिटेटेड टुडे बाय द इंडियन एयरफोर्स फॉर देयर outstanding performance at national and international sporting events. The Indian Air Force Chief V.R. Chaudhary felicitated these sportspersons who are associated with IAS at a function in New Delhi. And addressing the gathering on the occasion, the Chief of Air Staff lauded the IAS Air Warriors for their stellar achievements in sports. He further advised them to continue to work hard and strive for greater laurels. Sergeant Pulkit Narang was honoured for representing India at the International Forum in 2022 and 23, and Sergeant Mohammad Noor Hassan and LAC Himanshu were felicitated for clinching gold in National Open Athletics Championship 2023. While T. Das, Marush P.S., Bandaru Krishna and Kushal Kumar were among 19 sportspersons who had won medals at national or international level in other categories like gymnastics, weightlifting, wushu, ultra marathon, cycling, handball, and other sports. And now coming to our last segment of paying tributes to some great personalities.
शुरुआत करते हैं साहित्यकार केदारनाथ सिंह से. हिंदी साहित्य में समकालीन कविता के प्रमुख हस्ताक्षर केदारनाथ सिंह की आज पुण्यतिथि है. 19 मार्च 2018 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा था. केदारनाथ सिंह की गिनती आधुनिक हिंदी कवियों और लेखकों में होती है. वे चर्चित कविता संकलन तीसरा सप्तक के सहयोगी कवियों में से एक थे. उनकी कविताओं का अनुवाद लगभग सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं के अलावा अंग्रेजी, स्पेनिश, रूसी, जर्मन और हंगेरियन जैसी विदेशी भाषाओं में भी हुआ. उन्होंने कई बड़े सम्मान हासिल किए, जिनमें साल 2013 के लिए देश का सर्वोच्च साहित्य सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार, मैथिली शरण गुप्त सम्मान, कुमारन आशान पुरस्कार, जीवन भारती सम्मान जैसे सम्मान शामिल है। और उनकी कविता की एक पंक्ति जरूर सुनाना चाहूंगा। मैं जानता हूं बाहर होना एक ऐसा रास्ता है जो अच्छा होने की ओर खुलता है, और मैं देख रहा हूं उस खिड़की के बाहर एक समूचा शहर है।
And the talented Indian actor known for his contributions to Bollywood films and television, Naveen Nishal, is having his death anniversary today. With his charming screen presence and versatility as an actor, Naveen Nishal became a popular figure during the 1970s and 1980s. Naveen Nishal appeared in numerous films, establishing himself as a leading actor in Bollywood, and some of his notable works include Victoria No. 213, Dhund, and of course, Buddha Mil Gaya.
रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई।
प्रसिद्ध भारतीय गीतकार और लेखक योगेश का जन्मदिन है। उन्हें दिल को छू लेने वाले गीतों के लिए जाना जाता है। भारतीय हिंदी सिनेमा में अमूल्य योगदान के लिए योगेश को दादा साहब फाल्के पुरस्कार के अलावा यश भारती पुरस्कार से भी नवाजा गया था।
राइट, ही मूव्ड टू बॉम्बे एट द एज ऑफ 16 लुकिंग फॉर वर्क एंड सॉट द हेल्प ऑफ हिज कजन योगेंद्र गौड़, हु वाज अ स्क्रीन प्ले राइटर देन। ड्यूरिंग हिज स्ट्रगल डेज ही इवन एक्टेड एज एन एक्स्ट्रा इन द हिट माइथोलॉजिकल फिल्म चक्रधारी स्टारिंग त्रिलोक कपूर एंड निरूपा रॉय, एंड दैट इज हाउ ही एंटर्ड द बॉलीवुड। एंड ऑफकोर्स He worked with some of India's finest directors like Hrishikesh Mukherjee and Basu Chatterjee. And here we have a song from the film of Basu Hrishikesh Mukherjee, Anand.
Kahi dur jab din dhar jaye saanj ki dulhan badan churaye chup kyun se aaye mere khayalon।
और सैयद इश्तियाक अहमद गवाफरी यानी भारतीय सिनेमा के मशहूर हास्य अभिनेता जगदीप का आज जन्मदिन है। उन्होंने अपने गुदगुदाते अभिनय से दर्शकों के बीच काफी लोकप्रियता हासिल की। अपने हाव भाव से दर्शकों को हंसाने वाले जगदीप ने उस दौर में काम किया जब फिल्म उद्योग में महमूद, जॉनी वॉकर, धूमल, कैस्ट्रो मुखर्जी जैसे हास्य कलाकार मौजूद थे। और जगदीप ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत बाल कलाकार के रूप में की थी, और बी आर चोपड़ा की फिल्म अफसाना से उन्होंने करियर की शुरुआत की।
अरे हाँ, इधर पुलिस ने आप दोनों पर 2000 रुपए का इनाम रखा है। अगर किसी ने मुझे देख लिया तो आपके साथ मैं आ जाऊंगा। आप तो नाते निकल लो।
सूरमा भोपाली, हम जेल जाना चाहते।
अल्लाह की तमन्ना पूरी करे। भोपाल होता तो हम तो देखे दो मिनट में आपको अंदर लगा देते। हमारा नाम सूरमा भोपाली ये है नहीं, लेकिन हाँ हमारी क्या जरूरत है, क्या तो देखे आपके नाम का भारत निकला पाए।
तो ये था मशहूर डायलॉग जगदीप का फिल्म शोले।
राइट, वेयर ही वाज वेरी पॉपुलर एज सूरमा भोपाली। And of course, today is also the birth anniversary of Sai Paranjpe, who succeeded as a woman filmmaker of contemporary India in making work that has received both critical recognition and popular commercial appeal. She is of mixed ancestry with a Russian father and a mother from Maharashtra. And of course, she got 4 national awards and 2 Filmfare awards. The government of India awarded Sai the Padma Bhushan title also in 2006 in recognition of her artistic talents. And we have another song from her movie, From Chashme Baddur.
Kali Ghodi Dwar Khadi Khadi Re Kali Ghodi Dwar Khadi
Kali Ghodi Dwar Khadi Khadi Re Kali Ghodi
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो अनुमति दीजिए धर्मेंद्र मणि राजेश और अनुजा कुमार को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की।
नमस्कार।